ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद तीसवा अध्याय, इसका शीर्षक है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। श्लोक क्रमांक 10। अर्थैरापादितैर्गुर्व्या हिंसयेतस्ततश्च तान् पुष्णाति येषां पोषेण शेषभोग्यात्यधः स्वयम्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, वह इधर उधर हिंसा करके धन प्राप्त करता है और यद्यपि वह इसे अपने परिवार के भरण पोषण में लगाता है किंतु स्वयं इस प्रकार से खरीदे भोजन का अल्पांश ही ग्रहण करता है। इस तरह वह उन लोगों के लिए नरक जाता है जिनके लिए उसने अवैध ढंग से धन कमाया था। तात्पर्य, एक बंगाली कहावत है, जिस व्यक्ति के लिए मैंने चोरी की वही मुझे चोर कहता है। जिन पारिवारिक सदस्यों के लिए मनुष्य अनेक पाप कर्म करता है वे उससे कभी प्रसन्न नहीं रहते। मोहवश अनुरक्त व्यक्ति ऐसे पारिवारिक सदस्यों की सेवा करता है किंतु इनकी सेवा में उसे जीवन की नारकीय अवस्था में प्रवेश करना होता है। उदाहरणार्थ, कोई चोर अपने परिवार के पालन हेतु कोई वस्तु चुराता है किंतु पकड़ा वही जाता है और बंधी बना लिया जाता है। यही सार है इस जगत का और समाज मैत्री तथा प्रेम के प्रति आसक्ति का। यद्यपि एक आसक्त पारिवारिक व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किसी न किसी तरह से धन कमाने में लगा रहता है किंतु वह उतने से अधिक का भोग नहीं कर पाता जितना कि ऐसे पाप कर्म किए बिना वह करता। 8 औंस यानी 1 पाव खाने वाले मनुष्य को लंबे परिवार का पालन करना होता है और इसके लिए धन कमाना होता है किंतु उसे पेट भर खाने से अधिक कुछ नहीं मिलता और कभी कभी तो उसे परिवार के झूठन पर ही निर्भर करना पड़ता है। अनुचित साधनों से भी धन कमा कर वह स्वयं जीवन का आनंद नहीं उठा पाता। यही आवरणात्मिका माया है। समाज देश तथा समुदाय की भ्रामक सेवा की प्रक्रिया सर्वत्र एक सरीखी है। यही सिद्धांत बड़े से बड़े राष्ट्रीय नेताओं पर भी लागू होता है। कभी कभी ऐसा राष्ट्रीय नेता जिसकी देश सेवाएं महान होती हैं अपने ही देशवासियों द्वारा मारा जाता है क्योंकि उसकी सेवाएं अनियमित होती हैं। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति अपने आश्रितों को इस मोहमयी सेवा से संतुष्ट नहीं कर सकता। यद्यपि वह इस सेवा से अलग नहीं हो सकता क्योंकि उसकी स्वाभाविक स्थिति ही सेवक की है। स्वाभाविक दृष्टि से जीव परमेश्वर का अंश है, किंतु वह भूल जाता है कि उसे परम पुरुष की सेवा करनी है और वह अपना ध्यान अन्यों की सेवा की ओर जोड़ देता है। यह माया कहलाती है। अन्यों की सेवा करने हेतु वह झूठे ही अपने को स्वामी मान बैठता है। परिवार का मुखिया अपने को परिवार का स्वामी मानता है, अथवा राष्ट्र का नेता अपने को राष्ट्र का स्वामी मानता है, किंतु वास्तव में वह माया की सेवा करता है और माया की सेवा करने से वह धीरे धीरे नरक को जाता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के बिंदु तक पहुंचकर भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए और अपना सारा जीवन, सारा धन, सारी बुद्धि तथा सारी बोलने की शक्ति उसी में लगा देनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम में भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को भक्ति और भक्ति से संबंधित मुद्दों पर, जो उनके कुछ प्रश्न हैं, भगवान कपिल उनका काफी विस्तार से उत्तर दे रहे हैं। इस 30वें अध्याय में अभी जो पिछले 9 श्लोक हमने देखे, अगर आप उन श्लोकों को पढ़ें तो पढ़कर ऐसा लगता है कि घर जंजाल में फंसना, विवाहित जीवन जीना बड़ी परेशानी है। अक्सर हम लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं तो लोग हमको ऐसा देखकर बोलते हैं, स्वामी जी हमको भी अपने साथ ले चलो, बड़े परेशान हैं जीवन से, इतने तकलीफ, इतना कष्ट, थोड़ा पैसा कमाने के लिए, परिवार को पालन पोषण करने के लिए इतना परिश्रम, आपका जीवन अच्छा है। और कभी कभी हमारे ब्रह्मचारी लोग कहीं जाते हैं प्रसाद के लिए कभी गृहस्थों के घर पे, वापस आकर उनके मन में उठता है कि इनका जीवन कितना अच्छा है, आराम से घर पर रहते हैं। हम लोग देखो आश्रम में कि ठीक से सोने की भी जगह नहीं मिलती है, जमीन पर डाल देते हैं, खाने के लिए जो मिलता है खाना पड़ता है, यहां तो पत्नी है, मेनू जो बोले वो बनाएगी। अंग्रेजी में कहावत है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में होता है सोचता दूसरी परिस्थिति ज्यादा अच्छी है। तो कभी कभी फनाटिक ब्रह्मचारी लोग ऐसा बोलते हैं कि ये देखो शास्त्र क्या बोलते हैं गृहस्थ के लिए, ये तो बिल्कुल माया मोह है, गृहम अंधकूपम, अंधे कुएं में क्यों प्रवेश कर रहे हो प्रभु जी, छोड़ो ये सब, आ जाओ लाल सेना में। फनाटिक ब्रह्मचारी, जो सही प्रकार से ब्रह्मचारी किसे बोलते हैं या ब्रह्मचारी या क्या है इसके बारे में ज्ञान नहीं रखते और बस अपनी सेना को बढ़ाने में लगे हैं, और दूसरी ओर कुछ फनाटिक गृहस्थ, संकीर्णवादी गृहस्थ बोलते हैं ब्रह्मचारी लोग देखो दिन भर कूदते रहते कीर्तन में बस, अब उसके बाद जाके पेट भर खाते हैं, सोते हैं, कुछ देखो काम काज नहीं करते, दिन भर खाना पीना सोना, आराम का जीवन जीते हैं। देखो हम कितनी मेहनत करते हैं, मेहनत कर करके डोनेशन दे देकर इनको पालते हैं, और ये देखो कैसा जीवन जीते हैं, ये जीवन ठीक जीवन नहीं है, जैसा हम लोग जीवन जी रहे हैं इसे सही जीवन बोलते हैं, मेहनत करो पैसा कमाओ, ये आलसी जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल कुछ काम काज के नहीं है। दोनों ही मत सही नहीं है। तो शास्त्र में इस प्रकार के अनेक अनेक स्थानों पर चर्चाएं आती हैं, जिसको पढ़कर ऐसा लग सकता है कि वैवाहिक जीवन में जाना ठीक नहीं है, बहुत परेशानियां हैं। अगर गृहस्थ जीवन खराब होता तो भगवान उसका निर्माण नहीं करते। चातुर्वर्ण्यम, भगवान बोलते हैं मैंने सृष्टि करी है, और हम बोलते हैं अगर उस गृहस्थ जीवन सही नहीं है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि भगवान की सृष्टि में कोई त्रुटि है। एक्चुअली भगवान के प्रति विद्रोह का एक प्रदर्शन है जो भगवान की बनाई हुई चीज में कमियां निकालना। तो जब इस प्रकार के श्लोकों को हम पढ़ते हैं, अब प्रभुपाद भी कभी कभी एकदम जोरदार तात्पर्य देते हैं, लेकिन प्रभुपाद पिछले कुछ अगर आप श्लोक पढ़े उनके तात्पर्यों को प्रभुपाद जी बड़े विस्तार से क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं गृहस्थ और गृहमेधी का अंतर। हर कोई व्यक्ति जो पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है वो गृहमंधकूपम में नहीं जा रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। गृहमेधी प्रभुपाद जी कहते हैं वो व्यक्ति जिसके जीवन का केंद्र इंद्रिय तृप्ति है, और गृहस्थ मतलब वो व्यक्ति जिसके जीवन का केंद्र कृष्ण है, कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण की सेवा करना। केंद्र कृष्ण है लेकिन साथ में परिवार भी चल रहा है जो कि कृष्ण की सेवा में लगाया जा रहा है, लेकिन प्रमुख उद्देश्य या फोकस जीवन का कृष्ण की प्रसन्नता है। हां, गृहस्थ जीवन में माया से प्रभावित होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि वहां पर कुछ सुविधाएं ऐसी होती हैं जो ऑथराइज्ड सुविधाएं हैं, अलाउड हैं वो सुविधाएं, जिससे में व्यक्ति फंस सकता है। भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी महाराज उन्होंने इस मुद्दे पर करीब 45 घंटे चर्चा करी है, बहुत जबरदस्त क्लैरिटी उन्होंने दी है कि ब्रह्मचारी आश्रम क्या होता है, गृहस्थ आश्रम क्या होता है, किन लोगों को ब्रह्मचारी से गृहस्थ पर जाना चाहिए, किन लोगों को ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए। इसके बारे में क्योंकि हम लोग अभी न्यू भक्त आश्रम देखते हैं तो कई प्रकार के लोग आते हैं ज्वाइन करने के लिए, तो इसके लिए समझावट चाहिए सही प्रकार से कि किस व्यक्ति को इस आश्रम में आना चाहिए, किसको नहीं। तो मैं पर्सनली बड़ा उत्साह मैंने प्राप्त किया था जिसमें भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी महाराज बहुत विस्तार से इसको समझाते हैं कि एक्चुअली जो बहुत प्रगतिशील ट्रेंड ब्रह्मचारी है वो ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने लायक है, प्रवेश करने योग्य है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम प्रमोशन है। ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम एक प्रमोशन है, यानी उसको ऊपर किस स्तर पर डाला जा रहा है। अगर वो वाकई ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है, केवल घर पर रहना गृहस्थ आश्रम नहीं होता, वो आश्रम नहीं है। आश्रम मतलब वो स्थान जिसका केंद्र भगवान है। केवल चार दीवार में पत्नी बच्चों के साथ रहने से गृहस्थ नहीं बन जाते। तो इस बात की बहुत विस्तार से पुष्टिकरण शास्त्र में अनेक स्थानों पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में करते हैं। आज के इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, बहुत ही सुंदर साक्षात्कार हमें दे रहे हैं कि भौतिक जगत में जो व्यक्ति गृह में प्रवेश करता है, एक पारिवारिक जीवन जीने का प्रयास करता है, तो दो प्रमुख चीजों से वह आकर्षित होता है, स्त्री और पैसा। ये सबसे बड़े आकर्षण के केंद्र होते हैं जब व्यक्ति पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है। तो कई जगह तो प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं जो पुरुष होता है, जिस प्रकार से गाय एक रस्सी से खूंटे से बंधी होती है, उसको मेध भी बोलते हैं। तो गृह मेधी मतलब वो जिसके गर्दन से रस्सी ऐसे किस खूंटे पे बंधी है, पत्नी के खूंटे पे, मतलब पत्नी उस खूंटे के समान है, मेधी के समान है जिससे वो बंधा हुआ है और उसके चारों ओर घूम रहा है, जिसके जीवन का केंद्र है पत्नी को संतुष्ट करना। देखिए ये बिल्कुल आध्यात्मिक जीवन का विकृत स्वरूप है। भक्त कृष्ण के चारों ओर जीवन जीता है, उसके हर जीवन के हर क्रिया का केंद्र भगवान होते हैं, लेकिन गृह मेधी का जीवन का केंद्र केवल पत्नी बच्चों को संतुष्ट कर। प्रोपा जी एक तात्पर्य में बतलाते हैं कि उसको केवल विवाह करने के बाद उसके जीवन का केंद्र होता है इंद्र भोग करना, पत्नी के द्वारा इंद्र तृप्ति करना, और कुछ समय बाद दूसरा इंद्र भोग चालू होता है बच्चों की तोतली भाषा सुनना। बहुत अच्छा लगता है पुरुष को जब वो अपने छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं देखता है, उनकी क्रीड़ाएं देखता है, उनकी तोतली भाषा सुनता है। प्रभुपाद जी इस प्रकार से विस्तार से समझाते हैं। लेकिन इन दोनों का भरण पोषण करने के लिए, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसा प्रभुपाद जी आज के इस तात्पर्य में समझा रहे हैं। हालांकि वह इतनी मेहनत करता है, लेकिन सारी मेहनत के बाद भी जिन लोगों को संतुष्ट करने के लिए उसने वो मेहनत की थी, प्रभुपाद जी कहते हैं वही लोग इस मेहनत करने वाले व्यक्ति को दोष देते हैं, ताने मारते हैं। जैसा वाल्मीकि के जीवन से हम देख सकते हैं, जो वाल्मीकि बनने से पहले वाल्याकोट जब वो थे, उनका प्रोफेशन, उनका जीवन का जीवन निर्वाह कैसे होता था, जो भी जंगल से जा रहा होता था उस व्यक्ति को वो लेके उसको लूट लेते थे, मार कर लूटते थे, और हर एक व्यक्ति जिसको मारते थे, मारने के बाद एक छोटा सा पत्थर एक घड़े में डालते थे। बड़े 7 घड़े थे जो भर चुके थे उन छोटे पत्थरों से, मतलब एक पत्थर मतलब एक व्यक्ति को मारकर लूटा। इतने सारे हजारों लाखों लोगों को वो लूट चुके थे मारकर। एक बार नारद मुनि वे मिले इस वाल्याकोट से, और उसे पूछे कि आप इतना बुरा काम कर रहे हैं थोड़ा सा धन दौलत कमाने के लिए, ये किसके लिए कर रहे हैं आप? तो उन्होंने बताया, अरे मैं अपने परिवार का बोझ, ये मेरा ऑक्यूपेशन, मेरा प्रोफेशन है, ये तो परिवार वालों के लिए कर रहा हूं, उनकी संतुष्टि के लिए कर रहा हूं। तो नारद मुनि ने उनसे पूछा कि अब इतना जो काम कर रहे हैं उसका जो कर्म फल आएगा, कितना पाप आएगा, क्या आपके परिवार वाले उस पाप का भागीदारी होंगे? वो बोला, क्यों नहीं, अरे मैं उनके लिए ही कर रहा हूं, उनकी संतुष्टि के लिए, उनके लिए ही सब पैसा कमा रहा हूं, तो उससे जो भी रिएक्शन, जो भी फल आएगा मेरे पे, वो क्यों नहीं भागीदारी होंगे? तो नारद मुनि बोले, पूछ के आओ उनसे, अगर वो हां बोलते हैं तो। वाल्याकोट गए अपने घर पे, अपने पत्नी बच्चों को पूछा कि देखो मैं तुम्हारे लिए ही सब पापकृत कार्य कर रहा हूं, तो इसका जो फल आएगा क्या तुम लोग उसके भागीदार नहीं बनोगे? वो बोले, हम क्यों बनेंगे, हमने थोड़ा ना बोला आप ये पाप करके हमको पैसा कमाओ, हमको संतुष्ट करो, और बहुत कुछ वाल्याकोट को बोला। उस समय वाल्याकोट की आंखें खुली, अबे नारद मुनि को जाके उनके चरणों पे जाके गिरे और पूछे कि अभी मैं तो अभी तक यही सोच रहा था कि मेरी पत्नी बच्चे इसका मेरे कर्मों का फल लेंगे, मैं तो इतना पाप कर चुका हूं। और उसके बाद पूरी श्रृंखला आती है जिसमें कैसे नारद मुनि ने उनको बताया, क्योंकि इतना पाप उन्होंने किया था, वे राम नाम का जप नहीं कर सकते थे। तो प्रचारक बहुत बुद्धिमान होते हैं, वे जानते किस व्यक्ति को क्या बोला जाए जिससे वो व्यक्ति भगवान के कम से कम एक स्टेप करीब आए। तो नारद मुनि ने उन्हें मरा कहने को बोला, जिसके द्वारा जप करते 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 वे आज वाल्मीकि के नाम से फेमस हैं और जिन्होंने पूरी रामायण की रचना करी। लेकिन हमने देखा, जो कृपा जी इस तात्पर्य में बोल रहे हैं, कि वही परिवार वाले जिनके लिए इतना परिश्रम हो रहा है, वे हमारे पाप कर्मों में भागीदारी नहीं होते, हमारी मेहनत की कीमत को नहीं समझते। तो फिर व्यक्ति सोच सकता है, क्यों करूं फिर इतनी मेहनत में उनके लिए? इस प्रकार के तात्पर्यों को पढ़कर हमारे मन में या हमारे हृदय में एक विरक्ति की भावना आनी चाहिए, गैर जिम्मेदारी की नहीं, ना कि मैं कोई मेहनत नहीं करूं, छोड़ो जाने दो उनको, जो करना करेंगे परिवार वाले, क्यों मेहनत करूं उनके लिए, अपने लिए जितना जरूरी है उतना कमाऊंगा मैं, बस उनकी देखभाल मैं नहीं करूंगा, ये गैर जिम्मेदार है। अनासक्ति के नाम पे कभी कभी लोग गैर जिम्मेदारी की तरफ चले जाते हैं, और जिम्मेदारी के नाम पे कभी कभी लोग आसक्त हो जाते हैं। दोनों ही ये तरफ सही नहीं है। लेकिन हमारा जो अभी परिस्थिति है, हमारी परिस्थिति आसक्ति की तरफ ज्यादा है। हम जो भी गृहस्थ आश्रम में जो लोग मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, उनका कमाने का केंद्र परिवार बच्चों को संतुष्ट करना, जैसे इस प्रकार से बताया, काफी हद तक आसक्ति भी हमको प्रेरित करती है मेहनत करने के लिए। हमने देखा कई कंपनियों में जब हमारे स्टूडेंट्स लोग नौकरी करने जाते हैं तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है नौकरी मिलने में, लेकिन जब विवाह हो जाता है तो नौकरी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि जो कंपनी के मालिक है उनको पता है ये अभी काम छोड़ेगा नहीं, क्योंकि परिवार बच्चों की देखभाल करनी है ना इसको। लेकिन जो जिस लड़के ने विवाह नहीं किया उसके लिए वो नौकरी बदलता रहता है, फट जहां अच्छा ऑफर मिलेगा इस नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी, दूसरी नौकरी को छोड़कर तीसरी नौकरी, ऐसा वो बदलते रहते हैं, क्योंकि उनको क्या नहीं भी मिली दूसरी नौकरी, थोड़ा टाइम वेट करना पड़ जाए तो पहले नौकरी से इतना कमा लिया है, अकेले को तो पालन पोषण करना है। विवाह करने के बाद ऐसा नहीं होता है, इतना आसान नहीं है नौकरी छोड़ना। तो इसलिए जो मालिक लोग हैं वे भी बुद्धिमान हैं, जानते हैं कि एक बार इसमें विवाह कर लिया अभी तो पालन पोषण करने के लिए मेहनत करेगा, ये छोड़कर नहीं जाएगा हमारी कंपनी को। तो आसक्ति के कारण अधिकतर लोग इतनी मेहनत करने को तैयार होते हैं। लेकिन जैसा कृपा जी एकदम हकीकत को सामने लाकर रख दिए कि अगर सोचो जिन लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो क्या वो आपकी मेहनत को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इस जगत में कृपा जी लिखते हैं कुछ एक दो तात्पर्य पहले, प्रेम नाम की चीज होती नहीं, हर व्यक्ति स्वार्थी है, बस कितना स्वार्थी है ये अंतर है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में। लेकिन अंततः भौतिक स्तर पे जब तक व्यक्ति है वो स्वार्थी ही है, हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे को इस व्यक्ति से मेरे को क्या लाभ मिलेगा बस। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं प्रेम जिसके लिए एक व्यक्ति प्रेरित होता है अपने परिवार वालों की सेवा करने के लिए मेहनत करता है, फल क्या होता है। कुछ साल पहले हमने मंदिर में हम लोग धर्माचारी इष्ट गोष्ठी में इस मंदिर ने दूसरे मंदिर में एक ड्रामा किया था, बहुत सुंदर, उसकी छवि मेरे माइंड में एकदम क्लियर है। तो उसमें बताया गया था एक बार एक युवक एक लड़का बहुत ही सीरियस सिंसियर आध्यात्मिकता में रुचि रखता था, गुरु का आश्रय लिया था, तो लेकिन बार बार वो घर की ओर आकर्षित होता था, घर जाना है, घर वालों के साथ रहना है। गुरु जी बोलते थे तुम अभी कम उम्र है तुम्हारी, अभी ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर ट्रेनिंग लो पहले, उसके बाद तुम्हें विवाह करना है तो जाना। लेकिन वो बार बार कुछ ना कुछ कारण से गुरु जी को कारण देता था, फिर घर भाग जाता था, घर जाके दुकान है उसमें से कुछ काम करता था, घर के कुछ काम करता रहता था, बहुत आसक्त था अपने घर से। तो एक बार गुरुजी ने सोचा कि इसको मैं इतनी बार बता चुका हूं कि अभी तुम्हारा उम्र है कि ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर तुम ट्रेनिंग लो, क्यों तुम घर की ओर भागते हो। उसको बताने के बाद ही समझ नहीं रहा, तो उन्होंने एक तरकीब अपनाई, इस व्यक्ति को बुलाकर बैठाया। गुरुजी ने पूछा कि एक बार बताओ तुम इतना मेहनत अपने परिवार वालों के लिए कर रहे हो, मैं मुझे जानकारी है तुम कितनी घंटों घंटों दुकान पर बैठते हो, अपने घर वापस आने के बाद फिर घर के कुछ ना कुछ काम करते रहते, कुछ खरीदारी करने चले जाते, सुबह से लेकर रात तक तुम इतनी मेहनत कर रहे हो अपने परिवार वालों के लिए क्यों। बोला मेरे और परिवार वालों के बीच का संबंध बहुत प्रेममय संबंध है, कि जितना प्रेम मैं उनसे करता हूं उससे कहीं अधिक ज्यादा वे लोग मुझसे प्रेम करते हैं। तो जब व्यक्ति कोई मुझे इतना प्रेम देता है तो क्यों ना मैं उनके लिए इतनी सी मेहनत करूं। तो गुरु जी सोचे ये व्यक्ति अभी तथागतित प्रेम से अंधा हो चुका है, ये समझ नहीं पा रहा है कि जगत में प्रेम है ही नहीं। तो उन्होंने बोला इस लड़के को, ठीक है मैं तुम्हें एक बात बतलाता हूं, तुम उसका पालन करो। अभी तक मैं तुम्हें गुरु होने के नाते इतनी सारी बातें बतलाई, तुम मानते तो हो नहीं, अभी एक बात कम से कम मेरी मानो तुम। बोला ठीक है गुरु जी, आप एक बात जो बोलेंगे अभी मैं मानूंगा इसको। आप बोले क्या चाहते हैं आप? तो बोला तुम घर जाओ, इस बार जब मेहनत कर रहे होगे कोई भी एक दिन को चुनकर, ऐसा व्यतीत करना कि तुमको हार्ट अटैक हो गया और तुम मर गए। एक मरे हुए व्यक्ति का तुम एक ड्रामा करना और फिर देखना कौन परिवार वाले तुमसे कितना प्रेम करते हैं। वो लड़का सोचा ये तो कोई कठिन की चीज नहीं है, गुरुजी बोल रहे हैं, इतने साल से मैंने कोई बात तो मानी नहीं इनकी, ये बात तो मैं आसानी से मान सकता हूं। ऐसा सोचकर वो शिष्य घर चला गया, रोज जैसा जैसा हमेशा जाता था गया, मेहनत करता था, मेहनत करी। दो चार पांच दिन छह दिन जब बीत गए तो ये एक दिन लड़के ने सोचा चलो आज मैं वो अपनी गुरुजी की आज्ञा पूरी करता हूं। और दुकान पे काम कर रहा था, दोपहर हो रही थी, अचानक उसने ड्रामा चालू किया और किसी को बहुत जोर से हार्ट अटैक हो गया। हम लोग ड्रामा में देखे थे जब हमारे ब्रह्मचारियों ने ड्रामा किया था, तो उसको हार्ट अटैक हो गया और बस धड़ाम से गिर गया। उसके दुकान में जो लोग कारीगर लोग काम कर रहे थे सब लोग आए, एक ने तुरंत खबर दी परिवार में कि ऐसा ऐसा देखिए ये आपका लड़का गिर गया, पता नहीं क्या हो गया उसको। तो भागे भागे उसका उसकी पत्नी और सॉरी उसके पिताजी माताजी भाई बहन सब लोग एक एक करके एकत्रित होने लगे। अभी गुरुजी ने पूरा प्लान कर रखा था, ये शिष्य को केवल इतना ही बताया था तुम इतना ड्रामा करना। गुरुजी ने एक अपने शिष्य को भेजा डॉक्टर का वेश धारण करके, वो पास में से वो गुजर रहा था तो परिवार वालों ने देखा कि कोई डॉक्टर जा रहा है, इधर आओ इधर आओ देखो हमारे लड़के को क्या हो गया। वो डॉक्टर आए जो कि डॉक्टर नहीं थे, वो गुरुजी के शिष्य ही थे। वे आए और उन्होंने चेक करा अपना स्टेथोस्कोप लगाकर, नाक के आगे उंगली लगाकर, और बड़े उदास से उन्होंने स्टेथोस्कोप रख दिया और बस ऐसा उदास चेहरा दिखाया कि सब परिवार वाले जोर जोर से रोने लगे कि ओहो हमारा बेटा हमारा भाई अभी नहीं रहा। बहुत रो रहे थे वो लोग, बहुत रो रहे थे, कितना प्रेम करते थे हम, कितना हमारे लिए मेहनत करता था, ऐसा लड़का तो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा करके बहुत सारी बातें इस लड़के के बारे में कर रहे थे। उस समय वे गुरुजी वहां पर आ गए संन्यास वेश में और ये लोग रो रहे थे, महाराज स्वामी जी देखिए हमारा बेटा मर गया, क्या कुछ अपना कुछ तुम मंत्र तंत्र विद्या कुछ लगाइए, कुछ हमारे बेटे को जागृत करिए, कुछ तो करिए, हमारा बेटा ऐसा मर गया, इतनी कम उम्र में ऐसा कोई मरता है क्या, करके विनती करने लगे गुरुजी से। तो गुरुजी बोले मेरे पास वो शक्ति है कि मैं आपके इस बेटे को जागृत कर सकता हूं, मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता हूं, लेकिन एक कंडीशन है, आप में से किसी एक परिवार वाले को अपना जीवन देना पड़ेगा, वो अपना जीवन दे इस व्यक्ति को मैं जीवित कर दूंगा, ये शक्ति मेरे पास है। और ऐसा बोल के उन्होंने उस लड़के के पिताजी की ओर देखा, तो पिताजी की ओर थोड़ा वो थोड़ा घबरा गए कि मेरे को देख रहे हैं ये। वो बोले स्वामी जी घर का मुखिया तो मैं ही हूं, अभी बच्चे नादान हैं, इनको इतनी समझ नहीं कैसे परिवार की देखभाल करनी चाहिए, और मैं ही अपना जीवन दे दूंगा तो इनको बच्चों को मार्गदर्शन देने वाला कौन रहेगा। ऐसा बोलकर उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, पत्नी भी थोड़ी घबरा गई ये सुनकर कि इन्होंने तो अच्छा डाल दिया। तो बोली देखिए अभी एक मैं ही माँ हूं जो बाकी सब बच्चे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है तो कोई कॉलेज में है, इन सब लोगों की इतनी सारी परेशानियां होती हैं। बाकी जो दो भाई हैं वो तो निखट्टू हैं, वो तो कुछ काम करते नहीं, अपने अपने भाइयों छोटे भाइयों की देखभाल करते नहीं, तो मैं अगर चली जाऊंगी फिर बाकी पूरे घर का मेंटेनेंस, पूरे घर की देखभाल करना, सारा घर तो मैं ही चलाती हूं, सारा रसोई की देखभाल करना, अगर मैं ही चली जाऊंगी तो कौन काम करेगा। ऐसा कर करके लंबा ड्रामा किया था भक्तों ने, क्योंकि भाइयों की ओर एक एक करके देखा, सब लोग एक एक करके बहाना दे रहे थे कि हम कैसे अपना जीवन दे सकते, क्योंकि हम नहीं रहेंगे तो परिवार में बहुत एक महत्वपूर्ण अंग मानो कट जाएगा। ऐसा सोचकर सबने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि कोई बात नहीं, चलो अभी मर गए तो अभी ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग तो कोई अपना जीवन नहीं दे सकते इसके लिए। और ऐसा सोचकर वे सोचे कि चलो अभी इसको, अभी गुरुजी से बोला कोई बात नहीं गुरुजी, अभी आपकी विद्या अपने पास रखी है, अब अभी हम लोग तो ठीक है, अभी कोई बात नहीं, इनका अंतिम क्रियाक्रम करके समाप्त कर देंगे। तो ऐसा सोचकर ये सब कुछ ये लड़का सुन रहा था, जितनी सब बातें ये लोग कर रहे थे, इसके पिता जो इतना प्रेम करते थे, माता जो इतना प्रेम करती थी, और मन ही मन उसके चल रहा था कि अरे मैं तो सोच रहा था ये लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं, लेकिन खैर कुछ देर बाद पिता ने अपने बच्चों बाकी लड़के जो थे उनको बोला चलो भाई उठाओ शरीर को, चलो यहां से लेकर जाते हैं और शमशान घाट ले जाकर जला देंगे। तो उन्होंने जब ये गिरा था, इसके हाथ पैर बिल्कुल ऐसे चौड़े थे, दोनों पैर भी चौड़े थे, हाथ भी ऐसा था, उसको उठाकर जब वो ले जा रहे थे तो दरवाजे से बाहर निकाल कर ले जाना था, लेकिन वो हाथ अड़ रहा था, वो क्योंकि उसने कड़क करके बैठा था, वो क्योंकि शव मतलब हाथ हाथ पैर कड़क हो जाते हैं, तो एकदम कड़क करके बैठा था, उसको ले जा नहीं पा रहे थे वो। तो कई लोगों ने बोला कि तरह दबाव के देखो भाई थोड़ा हो जाए तो लेकिन ले जा नहीं पा रहे थे, दरवाजा छोटा था, दरवाजा तो ठीक साइज का था लेकिन हाथ पैर ऐसा करने के कारण वो निकल नहीं पा रहा था। तो एक भाई ने बोला देखिए हमारे ऐसा हमारा भाई को ऐसा हो गया है, कोई बात नहीं हम अपने दरवाजे को तोड़वा देते हैं, तोड़वाकर आराम से बाहर निकाल देंगे। पिताजी अरे रुको रुको, अपने दूसरे लड़के को बोले जरा यार कैलकुलेशन करना, इसको तोड़ने का खर्चा कितना आएगा, तोड़कर रिपेयर करेंगे तो खर्चा कितना आएगा उसको कैलकुलेट करो, कंपेयर करेंगे, यही नहीं तो यही कहीं जला देंगे, इतना लेकर जाएंगे, उसका ले जाने का खर्चा, इसको तोड़ने का खर्चा, रिपेयरिंग का कौन सा खर्चा कम पड़ेगा वो डिसाइड कर लेते हैं, हम नहीं जला देंगे। फिर एक लड़का बोला अरे पिताजी इतना क्यों मेहनत करते हो, काट दो दोनों हाथों को, हाथ पैर काट कर आराम से निकाल लो। बोले ये तो बड़ा बढ़िया आइडिया दिया इसने। पिताजी बहुत खुश हो गए, शाबाश बेटे तो बड़ी अकलमंदी की बात करी, ये बेटा सब कुछ सुन रहा था। और जैसे ही एक भाई को लेकर आया आ रही कुछ काटने के लिए हाथ पैरों को, ये लड़का कूद कर उठा। इतने समय गुरुजी भी वहीं खड़े थे, सब देख रहे थे, और वो जोर जोर से बोलने लगा अपने परिवार वालों को कि यही तुम्हारा प्रेम है, इतना जीवन मेरे गुरुजी की आज्ञा को छोड़कर मैं आप लोगों के लिए इतना परिश्रम कर रहा था, वो गुरुजी मेरे को इतना प्रेम से कई सारी बातें बतलाते थे लेकिन मैं कुछ नहीं सुनता था उनकी, आपके लिए आपको प्रसन्न करने के लिए मैं इतना सब कुछ किया, लेकिन ये आपका प्रेम है। और तुरंत वे जाकर अपने गुरुजी के चरणों पर जाकर गिरा और बोली अभी जो आज्ञा गुरुजी आप जो बोलेंगे मैं वैसा वैसा ही करूंगा करके वो परिवार छोड़कर फिर वो अब आश्रम में चला के अपने गुरुजी के। तो ये तो छोटा सा ड्रामा ही था, लेकिन एक्चुअली ये हकीकत है। इस जगत में अगर हम सोचते हैं कि मेरी पत्नी या मेरा बच्चा या मेरे पति या मेरे पिता या मेरी माता मुझसे प्रेम करते हैं और उनके लिए मैं क्यों ना कुछ करूं, अगर हम वाकई ही अपने परिवार वालों से प्रेम करते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे उनको कृष्ण भक्ति दें, बस सामाजिक शारीरिक भौतिक चीजों से उनको संतुष्ट करने का प्रयास ये विफल ही जाएगा। कितना भी धन संपत्ति क्यों ना इकट्ठा करके परिवार वालों को दे देंगे, वे असंतुष्ट ही रहेंगे, क्योंकि आत्मा कृष्ण भक्ति के अलावा किसी चीज से संतुष्ट हो ही नहीं सकती। इस तत्व को हम बौद्धिक स्तर पर जानते हैं, लेकिन साक्षात्कार न होने के कारण फिर भी मेहनत करते हैं बहुत। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि जो व्यक्ति बहुत मेहनत करकर बहुत पैसा भी कमा लेता है, लेकिन खाएगा तो उतना ही जितना उसके पेट में जगह है, कभी कभी तो उतना भी नहीं खा पाता, क्योंकि परिश्रम करने में इतना समय जा रहा है कि खाने का भी समय नहीं होता है। हाँ, ऐसा होता है। लोग हमें मिले हैं लोगों से जो कि शाम को 8-7 बजे लंच कर रहे हैं अपना, क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। अक्सर आज के समय में नो टाइम प्रॉब्लम बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, टाइम ही नहीं है लोगों के पास, इतनी मेहनत कर रहे हैं किस लिए? दो कुछ कमा कर थोड़ा खाने के लिए, परिवार का पोषण करने के लिए। लेकिन इतना रूपा जी बोलते थे, हाथी का भाई बड़ा परिवार होता है, उसको अपनी अपनी इकोनॉमी अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए, परिवार वालों को देखभाल करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जबकि हाथी तो एक टन भोजन खाता है एक टाइम पे, ऐसे 3-4 अलग अलग टाइम पे भोजन खाता है, 4-5 टन भोजन खाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं 8 औंस यानी 1 पाव आदमी भोजन खाता है, उसके लिए इतना मेहनत। हाथी 1 टन खाता है एक बार में, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको अपने परिवार वालों को देखभाल करने के लिए। जो चाहिए भगवान ने दिया है। उसी प्रकार से भक्ति में आने के बाद हमें सोचना चाहिए कि कोल्हू के बैल के समान इतनी मेहनत करना, ये कहकर कि परिवार वालों के लिए कर रहा हूं, ये मूर्खता है। और इतना करने के बाद भी परिवार अगर आप उनको कृष्ण भक्ति नहीं दे रहे हैं, वो संतुष्ट हो ही नहीं सकते। वो संतुष्ट नहीं, आप भी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हर जीव केवल कृष्ण भक्ति से ही संतुष्ट हो सकता है। और कृष्ण भक्ति को ठीक से करेंगे तो फिर इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आप भी और परिवार वाले भी संतुष्ट हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कभी कभी गृहस्थ भक्त लोग भी आते हैं, चर्चा करते हैं प्रभु जी क्या करें, पत्नी बच्चों को देखभाल करनी है, पैसा कम पड़ रहा है, जो सैलरी आती कम आती है, तो ऐसा कुछ करें, थोड़ी और ज्यादा पैसा कमा लें, पत्नी की कुछ डिमांड्स हैं उनको पूरी कर दें, तो वो संतुष्ट हो जाएंगी, शांत बैठेंगी। नहीं तो घर जाना मतलब एक बिल्कुल कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में जाने के समान होता है। वक्ता कैसी बात बोलते हैं। लेकिन आप कुछ भी जो आज पत्नी या बच्चे जो बोल रहे हैं, वो उनकी मांगे पूरी कर भी दें, वो मांगे उतनी नहीं रहेंगी और बढ़ेंगी मांगे। लेकिन हाँ, कृष्ण भक्ति अगर उनको दें, हम खुद अच्छे कृष्ण भक्त बने, अपनी साधना को ठीक प्रकार से करें, पत्नी बच्चों को मंदिर लेके आए, उनको भक्तों का संग कराएं, उनसे उनको कथा सुनवाएं, हरिनाम का जप में कीर्तन में भाग करवाएं, तो आप देखेंगे बड़े आश्चर्य से वो संतुष्ट रहेंगे। कुछ सुविधा आप नहीं भी दे पाए उनको, बहुत ही गरीबी में भी रख रहे हैं उनके स्टैंडर्ड के अनुसार, तभी भी वो संतुष्ट रहेंगे। तो संतुष्टता इस जगत के चीजों से जो कि धन कमाने से आती है, प्रभुपाद जी बस इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं कि खराब तरीके से या गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं दे सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर चर्चा करने का समय नहीं है। शास्त्र में प्रभुपाद जी कई जगह अपने तात्पर्य में ये बात बतलाते हैं कि गलत तरीके से की गई सही चीज गलत हो जाती है। उद्देश्य भले ही आपका परिवार वालों की देखभाल करना था, जो सही है, आपका कर्तव्य है, लेकिन अगर हम उसको गलत तरीके से धन का उपयोग करते हैं, धन कमाते हैं, तो वो धन हमको काटेगा, यानी काट कर चले जाएगा, मतलब काटेगा भी, तकलीफ भी देगा और फिर चले भी जाएगा, टिकेगा भी नहीं। तो खासकर गृहस्थ भक्तों को चाहिए कि बहुत सोच समझ कर अपना ऑक्यूपेशन चुने, किस प्रकार से रुपया पैसा कमाया जा रहा है, अगर उसमें त्रुटियां हैं, गलत तरीके अपनाए गए हैं, उस गलत तरीके से कमाया हुआ धन बहुत कष्ट देता है। एक भाई बतला रहे थे किसी मनु संहिता को कोट करते हुए, जिसमें श्लोक आता है कि धन कितना कमाया जा रहा है और उसके लिए कितनी मेहनत की गई है, ये दो चीजें अगर प्रपोर्शन में नहीं है, यानी तो हम बिना मेहनत करे बहुत धन कमाना या बहुत मेहनत करके थोड़ा सा कमाना, दोनों खराब है शास्त्रों के अनुसार। तो मनु संहिता कहती है कि हमारा कितना धन कमाया जा रहा है उसके लिए पर्याप्त मात्रा की मेहनत होना जरूरी है, नहीं तो वो धन बहुत तकलीफ, वो खराब धन है, वो ब्लैक, आज वो ब्लैक मनी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली शास्त्र के अनुसार काला धन बोलते हैं उसको जो जिसमें कि मेहनत और धन कमाया गया है वो प्रपोर्शन में नहीं है। कम से कम मेहनत बहुत कमा लिया, वो धन काला धन की कैटेगरी में आता है शास्त्र बोलते हैं, मनु संहिता बतलाती है, और वो धन बहुत तकलीफ देता है। यानी कि यहां तक कि शास्त्र में भी बताया गया कि पहले के समय जब ब्रह्मचारी लोग होते थे वे दान लेने के लिए मधुकरी करने जाते थे तो बताया गया था कि इनको अपने माता पिता के घर नहीं जाना चाहिए मधुकरी करने, उसमें अलग अलग स्टैंडर्ड दिए गए हैं, सबसे पहले उनको ब्राह्मणों के घर जाना चाहिए मधुकरी करने, वहां से कुछ ज्यादा नहीं मिलता तो फिर क्षत्रियों के पास जाना चाहिए, ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड दिए गए हैं, और आखिर लास्ट स्टैंडर्ड है कहीं नहीं होता तो अपने परिवार के पास जा सकते हो, परिवार वाले अपने आसक्ति के कारण आपको दे देंगे जल्दी से, तो मतलब मेहनत उस पर ज्यादा लगेगी नहीं और खूब धन मिल जाएगा, खूब मधुकरी मिल जाएगी, वो सही नहीं है। इसलिए मनु संहिता में उसको लास्ट स्टैंडर्ड डाला गया है कि सबसे पहले वहां ना जाएं कि आसानी से हो जाएगा काम, क्यों ना फटफट मधुकरी करके ले आएंगे आश्रम, आराम से जाके बैठेंगे, क्यों इतनी मेहनत करना, इतनी मधुकरी करना, इतना मेहनत करके थोड़ा सा कुछ कमाना, थोड़ा सा कुछ लेके आना गुरुजी के लिए, ये वृत्ति ठीक नहीं है। कलयुग में लोग आलसी हो गए हैं, कम से कम काम करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं, शास्त्र इसको सही नहीं कहते, इस प्रकार से कमाया हुआ धन तकलीफ देके जाता है। तो पर्याप्त मात्रा की मेहनत, उससे जो पर्याप्त मात्रा में धन आता है तो उस धन को सही प्रकार से परिवार की सेवा, परिवार की देखभाल करके और भगवान की सेवा भी साथ साथ करें तो वो परिवार फिर गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन की कैटेगरी में डाला जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात रूपा जी आज के तात्पर्य में बतला रहे हैं, दो बातें, एक कि परिवार वालों के आप कितना भी क्यों ना मेहनत करके उनको संतुष्ट करने का प्रयास करें, अगर कृष्ण भक्ति नहीं दे रहे हैं तो वे संतुष्ट तो होंगे नहीं, उल्टा आपको ही ताने मारेंगे और आपको ही भला बुरा बोलेंगे। तो वो मेहनत कर परिवार वालों की देखभाल करने का जो प्रोग्राम है वो सही नहीं है। और दूसरी बात प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि धन किस प्रकार से उपयोग कमाया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर सही प्रकार से नहीं कमाया जा रहा है तो उसको अगर सही जगह भी लगाया जाए तो डेंजरस होता है। जैसे हम कभी कभी लोग चोरी करके पैसा दे दें, उसको अगर हम भगवान की हुंडी में डालते हैं जिससे कि उसका कर्म रिएक्शन खत्म हो जाता है, कोई व्यक्ति सोचे कि मैं डोनेशन लेके आ जाऊंगा और वो गलत तरीके से पैसा कमाया, उसको मैं एक किसी भी ऐसी डायरेक्ट क्रिया में लगा दूंगा, मैं उस क्रिया में बहुत तकलीफ आएगी, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है और टूट जाएगा, खराब हो जाएगा जल्दी ही, क्योंकि जो धन था वो खराब तरीके से कमाया हुआ था, हमने भगवान की सेवा में पहले नहीं लगाया। शास्त्र बोलते, मनु संहिता बोलती है मनी इज अ कर्मा कैरियर, पैसा जो होता है उसमें उसके साथ हर कर्म चलता है, जिस व्यक्ति ने कैसे कैसे पैसा कमाया उसके खराब तरीकों से कमाया हुआ पैसा का कर्म पैसे के साथ चलता है। हम उसको अगर डोनेशन भी दे दें, हमको उसको ले लें और अपनी सेवा में लगा लें तो जो जिस जगह हमने उपयोग किया बहुत तकलीफ देगा वो धन। तो ऐसा नहीं कहीं से भी इकट्ठा करो, कुछ भी कमाओ लगाओ, अपना काम करो बस, बहुत डेंजरस है ये। तो पहले के समय में ये ज्ञान दिया जाता था कि किधर से धन लेना चाहिए, किस तरीके से कमाना चाहिए और फिर कैसे इसका उपयोग करना चाहिए, शास्त्र में सारा वर्णन है ये। तो सब बातों को समझ कर कृष्ण को केंद्र रखते हुए धन कमाना, कृष्ण को केंद्र रखते हुए धन का उपयोग करना, परिवार वालों की देखभाल करना, तब व्यक्ति पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी गृहेते गोलोक भाए, एक तरफ है गृहम अंधकूपम और दूसरा तरफ है गृहेते गोलोक भाए, दोनों ही गृह हैं लेकिन एक जगह इंद्र तृप्ति केंद्र है, दूसरी जगह भगवान केंद्र है, तो वही गृह गोलोक भी बन, गोलोक वृंदावन बन जाता है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते थे जब वो घर आते थे, हालांकि 13 बच्चे थे उनके लेकिन फिर भी वो बोलते थे कि जब मैं घर आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं गोलोक वृंदावन आ गया। आज अगर कोई व्यक्ति 13 बच्चों के परिवार में लौटेगा अरे गृहेते कुरुक्षेत्र भाए कुरुक्षेत्र का मैदान लगेगा। दिन इतना कठिन हो जाएगा उसके लिए घर पहुंचना। तो हमें क्या हम आज की चर्चा से सीखना है कि केंद्र हमें केवल इंद्र तृप्ति नहीं रखना है। तो हम गृहस्थ तो छोड़िए, ब्रह्मचारी आश्रम में भी इंद्र तृप्ति को केंद्र रखते हुए घर ब्रह्मचारी आश्रम में रहेंगे, वहां पर भी बहुत तकलीफें आएंगी, बहुत कष्ट आएंगे। आश्रम में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ये आश्रम ये वो आश्रम, केंद्र भगवान होने हैं। और जिस जिस भी जगह पर केंद्र भगवान है तो वहां पर कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। कृष्ण सूर्य समा माया हुए अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। अगर कृष्ण वाकई ही है तो माया वहां हो ही नहीं सकती। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीला प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, जय गौर प्रभानंदे।